ओम शांति। हम सभी के बीच में बाप दादा के विशेष रतन यज्ञ की दिल वजान सिको प्रेम से सेवा करने वाले सरल नेचर, मीठी वाणी और मिलनसार होकर के सदा चलने वाले ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित है। एक हाथ की ताली से सभी स्वागत करेंगे। भ्राता जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आदरणीय भ्राता जी, आपने विद्यार्थी काल में कर्नाटक में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त किया, जिसको 35 इयर्स हुए हैं। 30 इयर्स से आपने मधुबन बाबा की चरित्र तपस्वी भूमि में आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। साथ ही साथ में आप मनसा वाचा कर्मणा इतनी सेवा करते हुए विशेष रूप में आप सहज राजयोग के गहन अभ्यासी हैं, जिसके बहुत अच्छे गहरे तपस्या के अनुभव है। देश विदेश में आप योग तपस्या भट्टी करा करके अनेक आत्माओं में शक्ति और बल भरने का सेवा का बल आपके पास सभी का प्राप्त है। और आप वर्तमान समय शांतिवन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन में सेवाएं देते हैं। आप धार्मिक विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो बाबा के ऐसे विशेष रतन आज हम सभी को ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। अंतर मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? रामनाथ भाई हम सभी के बीच में ज्ञान रतन से झोली भरेंगे।
ओम शांति। आज आप और हम सभी इस बड़े डायमंड हॉल में क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? कौन सा मिलन मनाने के लिए? अव्यक्त मिलन। किससे मनाने के लिए? अव्यक्त बाप दादा से। तो अव्यक्त मिलन साकार मिलन नहीं है, अव्यक्त मिलन अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए हम सभी यहां एकत्रित हुए। और थोड़े ही चंद घड़ियों में ही, एक दिन भी नहीं है, थोड़े से समय के बाद जो अव्यक्त बाप दादा आकर के किससे मिलेगा? अव्यक्त बाप दादा आकर के किससे मिलेगा? अगर आप देख लो, एक बताता हूं, गीता में भी अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, ऐसे दुनिया में गीता में कहा, खड़े थे तो भी अर्जुन को हर प्रकार से ज्ञान सुनाया, तो भी लास्ट में अर्जुन को कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। इतने अक्षौहिणी सैनी थे, भीष्म पितामह थे, बहुत बड़े सब लोग थे युद्ध करने के लिए, तो कोई भी साकार श्री कृष्ण को देख सकते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप और हम सब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खड़ा था, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो यहां भी आप कहेंगे कि हम बाबा से मिलने आए, तो जिसको पता नहीं, जिसके सामने आप देखेंगे गुलजार दादी बैठी है, तो ये कैसा? तो कहते बाबा कहां आया? तो ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो किससे मिलने आए? तो अव्यक्त बाप दादा। और किससे मिलेगा? शरीर वालों से नहीं, अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति क्या है? तो शरीर को छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, शरीर में रहेंगे। तो अभी भी आपको समय है, तो आज शारदा बेन सवेरे कह रही थी कि अव्यक्त शांति वन नाम है, शांत, शरीर का कोई काम नहीं यहां। जैसे हम देखो हॉल में आते हैं तो चप्पल बाहर छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे कोई चप्पल पहन के नहीं बैठते। तो ऐसे ही शाम को ऐसे अभ्यास करो, जल्दी दौड़ दौड़ के आए, दिन में सोया नहीं, तो बाबा के सामने आते नींद आ जाती है तो फायदा ही नहीं है। इतनी मेहनत करके आए तो इतना अभ्यास करो, आज देखना कैसे बाबा आता है, आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज अभी से करो कि मुंह का काम कोई नहीं है, अभी से आप खाने पर भी जाएंगे आराम तो थोड़ा सा हल्का सा खा लो, जाके एक घंटा रेस्ट करो, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, शरीर की भी स्वस्थता चाहिए, आसन है ये। अगर आत्मा को इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर कुछ कर्म करना है तो आसन भी अच्छा चाहिए ना। अगर आसन ठीक नहीं तो हिलेगा, खांसी आएंगी, नींद आएंगी और कुछ होगा, तो शरीर की भी स्वस्थता चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। तो खाना खाने के बाद जाके आराम से एक घंटा रेस्ट करो। जब इधर आते हो फ्री होके हल्का, और जहां भी आपको जगह मिलता है आराम से बैठो, लेकिन आपको एक अंदर रखो, कहते लगन, लगन से, लगन में मगन हो जाओ। तो लगन क्या कि आपके मन में एक ही विचार चलना चाहिए कि गुलजार दादी के तन में बाप दादा दोनों आएंगे, बाप और दादा दोनों आएंगे, उनसे हमें मिलना है, उनको हमें देखना है। तो यहां कहीं भी आप बैठो, बैठे हुए आपकी नजर, चाहे स्क्रीन पर भी देख लो आप, चाहे इतना पीछे भी बैठो, तो आपकी नजर गुलजार दादी के भ्रुकुटी में होना चाहिए। बाबा आके इस आसन पर बैठेगा ना, दादी आके बैठने से पहले गीत बजते हैं, लोग कोई आ रहे जा रहे हैं, जैसे देखो आप कैमरा में फोटो निकालने वाला देखता रहता है, नहीं तो आंखें बंद है आंखें खुली है कैसे फोटो आएगा, वो देख करके क्लिक करता है। तो ऐसे आप यहां बैठो, बैठे बैठे पहले शुरू करो कि मैं कौन, अव्यक्त स्थिति, जैसे शरीर का भान रहता है, शरीर समझते है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए। तो आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित होंगे, क्योंकि सारी दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान किसी को भी प्राप्त होता नहीं है। कि भगवान को प्राप्त करने की विधि है, क्या विधि है, वो एक विधि है, और वो स्वयं भगवान आके, शिव बाबा आकर इस संगम पर हम बच्चों को बताता है क्या विधि है। तो बाबा ने कहा, बच्चे पहले आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त आत्मा, अशरीरी शरीर में रहते हुए शरीर का भान न हो, शरीर का विचार नहीं आना चाहिए। तो मन में तो विचार आएगा ना, नहीं आना चाहिए, कैसे होगा, मन तो खाली है। तो मन को कैसे बिजी रखो, व्यस्त रखो, वो चाहिए। तो अगर आप शाम को आधा घंटा एक घंटा भी यहां बैठो तो आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति को बनाओ। पहले आके बैठते ही आप आके बैठो, बाबा का इतना बड़ा फोटो है तो देखते रहो, कोई आ रहा है जा रहा है, हमारे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आया इधर देखो उधर देखो, तो वो कुछ भी नहीं करते हुए एक दिन, जैसे भक्ति में भी देखो व्रत रखते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, बिना कुछ किए हुए नहीं लगता है। सृष्टि में भी ऐसे नियम है, खेती में देख लो, एक बीज बोलो तो 100 दाना लगते हैं, बिना बीज बोए हुए कुछ उगता नहीं है। फिर और भी एक विधि है, गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा नहीं, जो बोएंगे वो होगा। तो आपको अव्यक्त बाप दादा से मिलना है तो अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो अव्यक्त स्थिति अगर नहीं है तो हमारे संकल्प अव्यक्त बाबा तक पहुंचता नहीं है, एक साकार में और एक अव्यक्त। तो साकार के विचार, शरीरधारी के विचार पहुंचेंगे नहीं, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी मीट। दोनों फ्रीक्वेंसी एक होना चाहिए, दोनों एक समान होना चाहिए, तब ही आप यहां बैठे बाबा का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। कि भगवान देने के लिए आया है, लेने वाला पात्र चाहिए। अगर पात्र नहीं है तो देने वाला तो दे रहा है, लेने वाला कौन? शरीर के लिए तो नहीं। अगर शरीर ठीक नहीं तो डॉक्टर दवा देगा, डॉक्टर ठीक करेगा। तो आत्मा को दवा और दुआ चाहिए। तो उसके लिए एक तैयारी करो, शाम को आके बैठते कहीं भी बैठो, किसी कोने में बैठो, आप आराम से बैठो और एक ध्यान रखना, एक लगन रखना मन में, एक ही विचार, मुझे आज बाबा से मिलना है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप और दादा, क्योंकि एक ही भारत देश है। कभी भी गॉड फादर नहीं कहता है, मां पिता कहते हैं। सिर्फ भारत में ही मां बाप है, भगवान मां बाप के रूप में, और मां बाप बच्चों की पालना करता है। देखो कितना साधु सन्यासी हो, कोई देवी देवता हो, महात्मा हो, कोई भी शरीर छोड़ के गए कभी आए नहीं है। श्री राम गया, श्री कृष्ण गया, देवी गई, लक्ष्मी गई, सरस्वती गई, कोई भी आए वापस? कहां गए वो? लेकिन यहां देखो, बाप दादा हर साल आते हैं। 50 साल पहले जो ज्ञान सुनाया था वही नहीं सुनाते हैं। 50 साल पहले सिर दर्द की दवाई थी, वही दवाई आज तक नहीं चल रही है। हर साल नई नई दवाई देता है। पर कितने सालों पहले गीता सुनाई थी, वही गीता चल रही है। तो उस जमाने में वातावरण सब अलग था, वो ज्ञान अभी काम नहीं करेगा। तो अभी जैसे कि आप पूछेंगे, एक साल पहले, पिछले साल बाबा ने एक बहुत सुंदर दवाई दी थी, इस साल भी दिया और अभी भी, आज भी आएगा कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कोई भी बीमारी है उसको दवा देता है बाबा, इस बीमारी के लिए ये दवा। हर ग्रुप में नई नई तरीका बताता है, लेकिन वो किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो आत्मिक स्थिति चाहिए। तो आप एक काम करो, शाम को आने के बाद इधर बैठना है, उधर बैठना है, इसको देखो, उसको देखो, वो न करके कहीं भी जगह मिले आराम से बैठो और अपने आप को तैयार करो, मैं कौन? मैं आत्मा हूं, इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। फिर पूछो, अपने आप से बात करते रहना, नहीं तो अगर ये बात नहीं करेंगे दूसरे विचार आएंगे। खाली मन रहता नहीं है, अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो हमारे साथ माताजी आई थी कहां गई, इन सबके विचार चलेंगे। आए थे भगवान से मिलने और इधर उधर उनको उनको ढूंढने लगे। तो इसके लिए कोई आया न आया, आज आप अपने आप को अकेले समझो और अपने जगह पर बैठो और अपने को तैयार करो, मैं कौन? मैं आत्मा हूं, मेरे पास ये मन है। ये मन के अंदर देह और देहधारी का किसी को याद नहीं करना है, बुद्धि भी है, बुद्धि के अंदर पुरानी कोई बातें याद नहीं करनी है। मन बुद्धि में ये याद रखो कि मुझे शिव बाबा से मिलना है। गुलजार दादी के ब्रकुटी के बीच में शिव बाबा आके बैठने वाला है। जब 2-3 गीत बजते हैं तो भी आपकी नजर अगर दादी जी के ब्रकुटी के में लगी रहे, कहीं भी बैठो, चाहे स्क्रीन पर भी देखो, तो ब्रकुटी में एक ही बाबा अभी आने वाला है। अगर पूरा ध्यान है, मन में एक संकल्प है, बाबा से मिलना है, तो देखना जब बाबा बाप दादा की प्रवेशता होती है, आप गुलजार दादी के ब्रकुटी में देखना, बिल्कुल सफेद चमकता हुआ सितारा देख सकते हो। ये नंबर 1 तरीका है, जिसके अंदर पूरी तैयारी है पहले से। इसलिए बहने क्या करती है, जो कम से कम 1 साल पवित्र है, रोज ज्ञान योग करते हैं, उनको ही बाबा से मिलने के लिए लाते हैं। क्योंकि तैयारी चाहिए ना, भगवान से सभी लोग मिल सकते हैं ऐसे ही, तो कुछ तैयारी चाहिए। फिर भी कहते भगवान के घर में अंधेर नहीं, थोड़ी देरी हो सकती है, तो अभी थोड़ा समय है, तो आज भी आप तैयारी करो। यहां बैठे बैठे शरीर शरीरधारी का विचार नहीं आना चाहिए, तो मन में एक ही विचार करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ब्राह्मण कुल भूषण हूं मैं, और आज बाप और दादा, मात पिता दोनों आने वाले हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनसे वरदान लेना है, उनसे शक्ति लेनी है। तो वो कहां आके बैठेंगे? इधर उधर देखेंगे तो नहीं, भ्रकुटी के बीच में बैठेंगे, तो नजर वहां लगी रहे, तो देखना आप बाबा आते ही आपको सफेद चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, जिसकी पूरी एकाग्रता है, पूरा ध्यान कहते हैं उसको। دوسرا نمبر اتنا نہیں ہے, کوئی ہرجہ نہیں. تو دیکھنا باپ دادی کو, دیکھتے دیکھتے آپ کو برہما بابا دکھائی دے گا, کیونکہ باپ دادا بھی آ رہا ہے. تو دادی کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھنا برہما بابا دکھائی دے گا. تو یہ دوسرا نمبر کا. تیسرا اور ایک دیکھنا آپ, آپ دیکھتے دیکھتے بابا اس کونے سے اس کونے تک ہر ایک کو درشتی دیتا ہے, ہر ایک کو دیکھتا آرام سے. آپ اس سمے کوئی, جیسے آج شاردا بہن بتا رہی تھی, تالی نہیں بجاؤ, فوٹو نہیں نکالو, تو یہ سب بعد میں. جب بھگوان دینے کے لیے آیا ہے کیسے دے گا وہ؟ سنکلپ اور درشتی سے دیتا ہے. تو اس سمے آپ کا من کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, صرف بابا سے مجھے شکتی لینی ہے. جان تو سنتے ہو, تو اس سمے بابا ادھر سے ادھر تک درشتی دیتا ہے. آپ کہیں بھی بیٹھو, بابا سے درشتی لے لو اس سمے. وائبریشن, کوئی پیچھے بیٹھے ہوئے بھی آپ کی نظر اگر اس طرف ہے تو آپ کو سنکلپ پہنچتا ہے بابا کا. یہ دو کام اگر آپ کرتے ہو تو دیکھنا آج شام کو آپ بیٹھیں گے ایسے آپ کو لگا شریر میں ہی نہیں ہے, کوئی شریر کا خیال نہیں ہے, نہ پیاس لگیں گی نہ بھوک لگیں گی, کچھ بھی شریر کا دھیان ہی نہیں رہے گا. اور بابا کے وائبریشن جو ہے وہ آپ کیچ کر سکیں گے, تب آپ کو لگے گا کہ ہم نے آج اتنا دن ہم سنتے تھے بھگوان کو سنا ہے, آج آپ کے مکھ سے نکلے گا ہم نے بھگوان کو پایا ہے. تو کہتے پانا تھا سو پا لیا, اور کیا باقی رہا؟ کہ اتنا دن کہتے ہم بابا کا گیان سنتے ہیں لیکن پایا نہیں ہے. تو آج اگر اس ستھتی میں آپ ستھت ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا ہم نے کچھ پایا ہے. کیسے بھگوان آپ کے پڑھاتا ہے ہم نے دیکھا ہے. کیونکہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پایا ہے, انوبھو کیا ہے, وہ ایک اتھارٹی ہے. آپ دل کھول کے کبھی کسی کو بول سکتے ہیں میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. لوگ چاہتے سنا ہے, آپ بھگوان کی وانی سنی, دیکھا تو نہیں ہے. تب ارجن کو بھی دیکھو کتنا گیان سنایا تو بھی مانا نہیں. جب اس کو اپنا روپ دکھایا تب اپنے گرو پر بھی بان چلانے کے لیے تیار ہو گیا. جو جیون میں ہمیں بہت کچھ تیاگ کرنا پڑتا ہے, سہن کرنا پڑتا ہے, کلیوگی دنیا میں بہت سارے جنموں کے حساب کتاب ہے. ہم نے بہت لوگوں کو دکھ دیا, بہت لوگوں سے دکھ لیا, تو ان سب حساب کتاب کو سہن کرنے کے لیے شکتی چاہیے. اور وہ شکتی سوئم بابا آ کر کے, کیونکہ بھگ بابا نے کہا میں بچوں کی سیوا کے لیے آتا ہوں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بابا کے انتیم سمے لیٹر پر بابا لکھتا تھا آئی ایم اوبیڈینٹ سرونٹ, اور اس میں بھی خاص ماتاؤں کو. ابھی دو چار دن پہلے آپ مرلی دیکھیں گے, بابا نے ماتاؤں کو نمستے کیا ہے کہ ماتا میں کہے ماتاؤں کے اوپر گیان کا کلش رکھا ہے. اور بھارت ماتا کہا, بھارت پتا نہیں, بھارت ماتا ہے. کیوں؟ اگر ایک پریوار میں ایک ماتا کو اگر گیان اچھی سمجھ میں آیا, کھانا بناتے سمے بابا کے یاد میں کھانا بناتی ہے, جیسا ان ویسا سب کا من ہوگا. پتی غصہ کرتا ہے, بچے غصہ کرتے ہیں, ہاں پتا ہے ان کا اپنا اپنا پارٹ ہے, بولنے دو, مجھے نہیں بولنا ہے, مجھے کچھ نہیں, کیوں گیان سنا ہوا ہے. تو ماتا اپنے آپ چپ رہتی, سہن کرتی ہے. کوئی کچھ بولتا ہے, اڑوس پڑوس والے درد ہے, دکھ ہے, سمسیا ہے, سب سما لیتی ہے. تو سمانے کی شکتی ہے. تو یہ ایسے بابا کے ملن کے لیے ہم کیوں آئے, بابا سے یہ شکتی چاہیے. اور باپ بچوں کی پالنا کرتا ہے شکتیوں سے, تو وہ ان کو ملے گا جو بالکل اویکت سوروپ میں استھت ہوں گے. میں آتما ہوں, یہ اندر دھن لگی رہے کوئی مکون, میں آتما ہوں, سرو شکتیوان شیو بابا کا بچہ ہوں, اور مجھے باپ دادا سے ملنا ہے. یہی ایک ہی وچار, کوئی آیا گیا ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جاؤ, اس کو کہتے ایکاگرتا, دھیان لگاؤ. تو اگر شام کو آپ کا آدھا گھنٹہ بھی آنے کے بعد ادھر بیٹھو آرام سے, وہی تیاری کرو. اور بابا کو دیکھتے اگر رکھتے ہو آپ, بدھی بالکل ایک جگہ پر ستھر ہے, تو وہ گرہن کرتی ہے. وہ انوبھو سارا کلپ میں آپ کے لیے لگا, ایسا چانس دوبارہ سارے کلپ میں نہیں ملے گا. تو तो संगम एक ऐसे बाप और बच्चों का मिलन का समय है। अगर आप कहेंगे दोबारा मिलना है तो एक कल्प के बाद, तो ऐसा अमूल्य समय को आज अपने हाथ से गवाना नहीं, किसी बातों में इधर के मैं चप्पल गया, मुझे खुर्ची मिली नहीं मिला, जहां भी आराम से शांति से आओ, कहीं भी जगह मिले वहां बैठो और वहां तक बाबा के कोने तक भी वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, आवाज नहीं पहुंचेगा, संकल्प बहुत तीव्र गति से पहुंचते हैं। और बाबा देखना हर एक बच्चे को चुन चुन करके दृष्टि देता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और आप भी कहते हो मेरा बाबा है, जितना हमें बाबा से प्यार है उतने बाबा को भी बच्चों से उतना ही प्यार है। तो प्यार का निशानी क्या है? तो बाबा जो चाहता है वो मुझे करना है, तब कहेंगे ना प्यार का अर्थ क्या है? मुझे बहुत आपसे प्यार है, आप जो कहते हो मैं हां जी करता हूं, ना करता हूं बाबा ये नहीं हो सकता है तो होगा। तब बाबा ने पिछले साल एक बहुत अच्छी दवाई दी थी, कि कौन सी दवाई दी थी, सारी बीमारी की एक दवाई दी थी, इस साल भी दिया। पिछले साल बाबा ने कहा बच्चे कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, क्या करेंगे? हाँ ना, ये पुरानी दवाई हो गई, नई दवाई बता, अगले साल बताया था। बाबा ने कहा सवेरे उठो, मन से मधुबन में पहुंच जाओ, तन से नहीं, बहन जी ने छुट्टी नहीं दिया, टिकट नहीं मिला, मन से मधुबन में पहुंच जाओ, बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। और अभी इस साल अभी बाबा आया, बाबा ने अभी कहा बच्चे कुछ भी हो जाए तो बाबा को बताओ, और किसी को नहीं, कोई दर्द दुख कोई समस्या कुछ भी हो और किसी को नहीं बताओ, बाबा को बताओ, बाबा सुनता है तभी बताता है ना, अपने आप तो नहीं बताता है। तो बाबा हर बच्चों का आवाज सुनता है, बच्चे कुछ भी हो जाए, कोई दर्द हो, दुख हो, समस्या हो, और किसी को नहीं बताओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है? आप बताओ, कोई दर्द है कोई लेगा, कोई समस्या सॉल्व कर सकता है? लेकिन बाप आया है। तो ये इस साल बाबा ने अभी कहा कि बच्चे जब भी कुछ हो बाबा को याद करो और बाबा को बताओ। बाबा बच्चों को मदद करने के लिए आता है। तब बाबा ने कहा हिम्मत रखो, तो बाबा की हिम्मत किसकी, कि और किसी को न बताते हुए मुझे बाबा को ही बताना है, ठीक है? और आज बाबा नई दवाई देगा कि आज क्या करना चाहिए, क्योंकि हर दिन बीमारी कलयुग में बढ़ती जाती है, समस्या बढ़ती जाती है, हर ग्रुप में बाबा नई नई चीज देता है। तो आज ध्यान से सुनना कि बाबा ने मुझे अभी क्या कहा, और ये 15 दिन के लिए दवा, फिर 15 दिन के बाद फिर आएगा। तो ये बच्चों की पालना है, माँ बाप बच्चों को एक ही खाना नहीं खिलाते हैं, रोज रोज नई नई चीजें बना के खिलाना चाहते हैं। तो भगवान माँ बाप भी बच्चों को रोज जब भी आता है नई नई चीज देता है, लेकिन हमें ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होता, हम बैठते हैं कोई ये नहीं आया वो नहीं आया, इधर हुआ इधर देखा, नहीं, व्रत है। देखो व्रत भक्ति में भी पानी भी नहीं पीते हैं, है ना, शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं ना, अब स्वयं शिव आ रहा है तो आप पानी पीना, ये खाना है, इधर देखना है, उधर आवाज किया, किसी ने ताली बजाया, ये भक्ति वाला नहीं है, यहां अव्यक्त मिलन आवाज नहीं है। तो ये आज शाम को, आज गुजरात बाबा कहता है पड़ोसी है, नजदीक वाले हैं, नजदीक वाले क्या करते हैं, जो बाप कहते हैं वो सुनते हैं, दूर वाले थोड़ा सुनाई नहीं देता है। तो आज गुजरात की माताओं का कमाल करना चाहिए, कोई भी आवाज नहीं, खांसी भी नहीं, जब बाबा दृष्टि देता देखना तो एक आवाज नहीं, खांसी भी नहीं आती है। इसके पहले वाले में था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, वो अपने आप नहीं होगा, आपको लक्ष्य रखना है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का आवाज नहीं होता है, शरीर समझते हो तो शरीर का आवाज होता है। तो शाम को दरवाजे से अंदर घुसते समय ये संकल्प करके आओ, कमरे से निकलते साओ, मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूं, ये घर से कमरे से निकलते संकल्प वही करते करते इधर आके बैठना, तो देखना आज शाम को कैसी आपकी अवस्था होती, कैसे आपको लगेगा, आपके दिल से निकलेगा मैंने भगवान को पाया है, बाबा को देखा है, सुना नहीं मैंने देखा है। और ऐसे लगेंगे आपको कि आज हम तृप्त हो गए, सारे कलप की जितनी भूख थी, आधा कलप से बाबा को कितना बुलाया, तो आज आपको लगेगा वो सारी प्यास बुझ गई, तृप्त हो गए। तो वो आज अभ्यास करना, ठीक है। ओम शांति।